नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। फ्लिपकार्ट की द बिग बिलियन डे सेल के पहले दिन गैर महानगरों का दबदबा रहा। पहले दिन की सेल में 60% ऑर्डर गैर महानगरों या छोटे शहरों से आए। सबसे अधिक ऑर्डर मोबाइल फोन उपकरणों और जीवन शैली उत्पादों के लिए थे। कंपनी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। फ्लिपकार्ट ने बयान में कहा कि बाजार में लाइफस्टाइल उत्पाद विक्रेताओं ने त्यौहार से पहले की अवधि की तुलना में दिए गए ऑर्डर की संख्या में 10 गुना वृद्धि देखी गई। इसके बाद फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का स्थान रहा। 7 अक्टूबर की बिक्री के आंकड़ों का हवाला देते हुए बयान में कहा गया, 60% से अधिक ऑर्डर पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों से दिए गए थे। 7 अक्टूबर को शुरू हुई सेल के पहले दिन कंपनी के पोर्टल पर 9.1 करोड़ लोग आए। फ्लिपकार्ट पर सबसे ज़्यादा खरीदार बेंगलुरु, दिल्ली और हैदराबाद से आए। इसके बाद मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और गुरुग्राम का स्थान रहा। किफ़ायती सेवाएं देने वाली एयरलाइन स्पाइस जेट और विमानों को किराए पर मुहैया कराने वाली कंपनी सेलेस्टियल एविएशन के बीच मामले का निपटारा करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ चुकी है। ये जानकारी मंगलवार को NCLT को दी गई। NCLT में मामले की सुनवाई के दौरान वकील ने ये जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। सेलेस्टियल एविएशन सर्विसेज लिमिटेड ने स्पाइस जेट के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू करने की अर्जी NCLT में लगाई है। इसी अर्जी पर सुनवाई के दौरान ये प्रकरण सामने आया। मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 नवंबर की तारीख तय की गई है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक सेलेस्टियल एविएशन ने 9 विमानों के लिए $2.99 करोड़ के भुगतान में चूक का दावा किया है। उसके पहले भी 4 अन्य विमान प्रदाता कंपनियां स्पाइसजेट के खिलाफ अदालत का रुख कर चुकी हैं। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी 23-24 अक्टूबर को जिनेवा में बैठक करेंगे। एक अधिकारी ने बताया कि इस दौरान वो अगले साल फरवरी में अबू धाबी में होने वाली मंत्री स्तरीय बैठक से पहले जरूरी राजनीतिक प्रोत्साहन को बढ़ावा देने और विशिष्ट समस्याओं के समाधान पर चर्चा करेंगे। प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने मंगलवार को इस बैठक के विवरण पर चर्चा की। अधिकारी ने कहा, WTO के सभी सदस्यों के वरिष्ठ अधिकारी जरूरी राजनीतिक प्रोत्साहन देने और MC13 के काम को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन अबू धाबी में 26 से 29 फरवरी तक होना है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। क्लाउडटेल इंडिया ने अमेजॉन पर प्रेशर कुकर की बिक्री से जुड़े एक मामले में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को 1,00,000 रुपये का जुर्माना चुकाया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उक्त प्रेशर कुकर की बिक्री के दौरान BIS मानकों का उल्लंघन किया गया था। CCPA ने नवंबर 2022 में अनिवार्य BIS मानकों का उल्लंघन करते हुए अमेजॉन पर प्रेशर कुकर बेचने के लिए क्लाउडटेल इंडिया पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। अमेजॉन इंडिया, जिसके पास क्लाउडटेल का स्वामित्व है, ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। प्राधिकरण ने अपने आदेश में क्लाउडटेल से 1,033 प्रेशर कुकर वापस मंगाने और ग्राहकों को पैसे लौटाने के लिए भी कहा था। घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को शुरुआती कारोबार में उछाल आया और सेंसेक्स 400 अंक से अधिक चढ़ गया। वैश्विक बाजार में उत्साहजनक रुझानों से निवेशकों की धारणा को बल मिला है। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 416.22 अंक या 0.63% बढ़कर 66,495.58 अंक पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 120 अंक या 0.61% उछलकर 19,809.85 अंक पर रहा। विश्लेषकों का मानना है कि इसराइल हमास संघर्ष पश्चिम एशिया में एक व्यापक संकट का कारण नहीं बनेगा और इसके कच्चे तेल की कीमतों पर भी शायद असर ना पड़े। चालू वित्त वर्ष में 9 अक्टूबर तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 21.82% बढ़कर 9.57 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को ये जानकारी दी। मुख्य रूप से कंपनियों और व्यक्तिगत करदाताओं की ओर से बेहतर योगदान से शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ा है। इसके साथ ही शुद्ध संग्रह 18.23 लाख करोड़ रुपये के पूरे साल के बजट अनुमान का 52.5% हो गया है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि 9 अक्टूबर 2023 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के शुरुआती आंकड़ों में लगातार तेज वृद्धि देखने को मिली। बयान में कहा गया कि सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 11.07 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 17.95% अधिक है। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टो कारोबार के लिए नई TDS व्यवस्था लाए जाने के बाद चालू वित्त वर्ष में अब तक इनसे 700 करोड़ रुपये से अधिक का कर जुटाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने यहाँ पत्रकारों को बताया कि नई ऑनलाइन गेमिंग व्यवस्था लागू होने के बाद चालू वित्त वर्ष के दौरान इनसे लगभग 600 करोड़ रुपए का कर जमा किया गया है। दूसरी ओर क्रिप्टो कारोबार से लगभग 105 करोड़ रुपए का कर मिला है। वित्त अधिनियम 2023 ने 1 अप्रैल 2023 से आयकर अधिनियम 1961 में एक नई धारा 194BA शामिल की। इसके तहत ऑनलाइन गेमिंग मंचों को किसी व्यक्ति द्वारा शुद्ध रूप से जीती गई राशि पर TDS काटना जरूरी है। व्यक्ति के धन निकालने पर या वित्त वर्ष के अंत में कर कटौती जरूरी है। इसी तरह 1 अप्रैल 2022 से वर्चुअल डिजिटल संपत्ति या क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से होने वाली आय पर 30% कर लागू है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।